नमस्कार, आप जुड़े हैं जनसत्ता के साथ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी। डॉक्टर पनगड़िया आजकल अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं और सबको पता है कि भारत में वह 2015 से 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे। वह एशियन डेवलपमेंट बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं और उन्होंने 1.5 दर्जन किताबें भी लिखी हैं। हमने उनसे आग्रह किया कि ताज़ा बजट जो पेश हुआ है उसे हमें समझने में मदद करें कि यह देश को किस दिशा में ले जाएगा। छटनी बढ़ेगी या रोजगार बढ़ेगा, आमदनी घटेगी या बचत बढ़ेगी, इन अहम सवालों के जवाब हम डॉक्टर साहब से समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर पनगड़िया, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत।
धन्यवाद जनसत्ता का मेरी तरफ से।
सबसे पहला सवाल ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बजट जो है आम लोगों के लिए है, कुछ कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए है, कुछ कह रहे हैं कि बजट लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। तो आपकी नज़र में ये बजट किसके लिए है? वोट देने वालों के लिए यानी गांव गरीब किसान के लिए, या फिर जो नोट देते हैं मिडिल क्लास, या किसी और के लिए?
मेरा अपना ये मानना है कि ये बजट सभी के लिए है, क्योंकि और इसमें काफ़ी कंटिन्यूटी है जो कुछ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, उसी काम को ये बजट आगे बढ़ाता है। और कम से कम मेरा ये मानना है कि देश को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि तेज़ी से ग्रोथ ग्रोथ हो, और हमने ये अनुभव भी किया है पिछले कई सालों से कि जिन सालों में, यानी कि करीब पिछले 25 साल अगर हम लें, तो इन सालों में जो ग्रोथ हुई है उससे सभी को फायदा हुआ है, सभी वर्गों को। ये हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो है, एक कोई स्पेसिफिक व्यक्ति है, उसको फायदा हुआ ना हुआ हो, पर अगर ग्रुप्स को देखें, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हों, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे जैन हों, सिख हों, सभी को ग्रुप लेवल पे सभी को फायदा हुआ है ग्रोथ होने से। जबकि जब ग्रोथ नहीं हुई थी ये 1950 से 1990 तक के 4 दशकों में, या ग्रोथ बहुत कम हुई थी, ऐसा तो नहीं कह सकते कि ग्रोथ नहीं हुई थी, ग्रोथ बहुत कम हुई थी, तो करीब करीब सभी वर्गों में जो है निराशा ही रही, और किसी के भी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनमें कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। पर हम खुद ये अनुभव कर चुके हैं कि ग्रोथ इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारे हमारे डेटा दिखाते हैं कि जो ग्रोथ पिछले 20 से 25 साल में हुई है उसमें सभी का उत्थान हुआ है। और इसके साथ एक ये भी बात बनती है कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आए हैं, तो इसकी वजह से सरकार कई सोशल प्रोग्राम्स को जो है फाइनेंस कर पाई है। तो जैसे नरेगा जो है ग्रोथ शुरू हुई, उसी के बाद से शुरू हो सका, फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसी के बाद से लागू हुआ, तो ये जो सोशल स्पेंडिंग का काम है और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का काम है, तो ये भी ग्रोथ से आगे बढ़ता है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ओवरऑल बजट का मकसद सभी का उत्थान करना है।
बजट पर जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है या जो इसका राजनीतिक पहलू है उसे छोड़ दें, तो एक बात बहुत ज़रूरी हो जाती है, बजट में जो आंकड़े हों वो आंकड़े प्रैक्टिकल हों, वो सच के करीब हों। तो अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका पूरा हिसाब किताब ही गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे एक उदाहरण 2019-20 का अगर हम लें, तो एक 12% GDP ग्रोथ का अनुमान बजट में रखा गया था और एक्चुअल जो ग्रोथ हुई वो 3.7%। उसी तरह से डिस इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा, जो आंकड़ा रखा गया और जो अचीव हुआ उसमें काफ़ी गैप हुआ। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बजट इस बार आया है, ये जो इसमें प्रोजेक्शन किए गए हैं और जो अनुमान जताए गए हैं वो प्रैक्टिकल हैं, मतलब सच के करीब हैं?
तो पहले तो ये देख लें कि जो पिछले जो आप कुछ उदाहरण दे रहे हैं उनमें ऐसा है कि इस दृष्टि से देखिए कि कई चीज़ें जो हैं अनुमान करके लगाई जाती है, और वो जो है बजट खुद भी यही कहता है कि अनुमानित है, एस्टिमेट्स हैं। तो कई एस्टिमेट ज़रूरी नहीं है कि वो सच साबित हों, और ख़ास तौर से अगर जिस वर्ष की आप बात कर रहे हैं तो वो तो कोविड का प्रकोप हुआ, तो 12% तो खैर रियल ग्रोथ तो किसी भी बजट ने नहीं कही है, वो नॉमिनल ग्रोथ की बात होगी, उसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड है। तो अब अगर कोविड हो गया तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो सभी देशों में ऐसा हुआ, कई देश में, आपको बता दूं स्पेन को देख लीजिए, इटली को देख लीजिए, हमसे भी बुरी। हमारी तो 6.6% गिरी थी ग्रोथ उस साल में, 2021 वाला जो साल था उसमें। स्पेन की, इटली की, इनकी तो ग्रोथ हमसे भी ज्यादा गिरी है, 7-7, 8-8% तक गिरी है। ये वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसी तरीके से आपने कहा जैसे डिस इन्वेस्टमेंट वाला है, थोड़ा एस्पिरेशनल रहता है कि किसी तरीके से ये करेंगे, पर आखिरकार में अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस सरकार के समय काल में पारदर्शिता बढ़ी है। कई चीजें हम पहले क्या करते थे कि ऑफ बजट रखते थे, सरकार क्या बोरो कर रही है सरकारी खाते पे नहीं आता था वो, जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था तो वो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए बोरो कर लेता था और वो सरकार के खाते पे नहीं आता था। जब जब वो दिखाते थे कि आपका जो बजट डेफिसिट है वो या फिस्कल डेफिसिट जो है उसमें जब दिखाते थे तो उसमें वो खर्चे में वो आता ही नहीं था। तो इसलिए जो है अब ये जो भी सारा सरकार बोरो करती है, चाहे बजट पर या पहले ऑफ बजट हुआ करता था, उस सबको बजट पे लाया गया है। तो ये बहुत बड़ा कदम इस सरकार ने उठाया है कि पारदर्शिता की ओर। अब अगर इस बजट की बात करें, आप कहना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ज्यादातर आप इसमें देखिए, अगर सर्कमस्टांसेस बदल जाए तो कोई कुछ नहीं कह सकता, पर जो परिस्थितियां देखकर जो अनुमान लगाए गए हैं बहुत कंजर्वेटिव हैं। आप देखिए पिछले बजट में भी देखिए, जैसे था कि रेवेन्यू जो एस्टिमेट किए थे सरकार ने उससे कहीं ज्यादा हुए, सरकार ने बढ़ा चढ़ा के नहीं किया। इस बार भी जो रेवेन्यू के प्रिडिक्शंस हैं वो जो है, इकोनॉमिक सर्वे खुद ग्रोथ बता रहा है करीब 11 या 12% नॉमिनल ग्रोथ,
जी
पर रेवेन्यू जो है सरकार ने बढ़ने का करीब अनुमान लिखा है वो सिर्फ 10.5% लिखा है, जबकि हमारा अनुभव ये रहा है कि 1% ग्रोथ से करीब 1.2% ग्रोथ हो जाती है रेवेन्यूज में बॉयंसी की वजह से। पर सरकार ने ये नहीं किया है बल्कि रेवेन्यूज को कम ही दिखाया है। तो इस तरीके से अगर सोचा जाए तो मैं ये मानता हूं कि हमारे टारगेट्स जो 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 अनुमान इसमें लगाए गए हैं, जैसे बजट डेफिसिट के बारे में जो वित्तीय घाटा जो दिया गया है 5.9%, वो पूरा होगा। पिछले वाला भी जो है 6.4% पे था, पिछले बजट का वो 6.4 पे ही रिवाइज एस्टिमेट आया है।
जो मौजूदा हालात है इकोनॉमी की, या जैसे आपने पिछले 20-25 सालों का जिक्र किया, तो अगर जैसे 2003 से अभी तक के वक्त को हम देखें और उसको अगर हम 6 साल 5 साल के ग्रुप में बांटें, तो जो पोटेंशियल ग्रोथ रेट है आरबीआई की रिसर्च रिपोर्ट भी बताती है कि 8, फिर 7 और फिर अब 6%। तो इसके मद्देनज़र आपको क्या लगता है कि ये जो बजट है ये देश की इकोनॉमी को किस दिशा में लेकर जाएगा, जो
नहीं
चुनौतीपूर्ण
ये,
हालात हैं उसके मद्देनजर?
हाँ तो चुनौतियों की बात हम कर सकते हैं आगे, पर अगेन उन्हीं चुनौतियों वगैरह को सबको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि बल्कि ये जो 6 या 6.5% की ग्रोथ का जो अनुमान अभी है, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लें या इकोनॉमिक सर्वे का एस्टिमेट लें, वो मेरे खुद के असेसमेंट से के हिसाब से बल्कि कम साइड पर है। मैं मानता हूं कि हमारा पोटेंशियल आराम से 7% का है और अगले 5-7 साल में ये 7% के रेट पर की दर पर हमारी वृद्धि जीडीपी में होगी, ये मेरा मानना है। पर इसका अर्थ ये निकलेगा कि करीब 5 साल में, करीब 2027-28 के साल तक भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी पांचवी है और बाकी जो दो देश अभी हमारे ऊपर हैं जिनको हम क्रॉस कर जाएंगे 2027-28 तक, वो जर्मनी और जापान है, ये मेरा मानना है। तब तक हमारी जो डॉलर में जीडीपी की जीडीपी है वो करीब 5 से 5.25 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी।
और जैसा आपने ग्रोथ की बात की, तो ग्रोथ को एक इंजन देने वाला बड़ा फैक्टर है प्राइवेट कंजम्पशन। और ये जो देख रहे हैं हम लोग, अगर 2020 से कंपैरिजन करें तो उस लेवल में ये 8% बढ़ा है। तो क्या आप मानते हैं कि अब जो स्थिति बन रही है और जो अब कोविड के बाद की जो स्थिति अब है, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि उस स्थिति से थोड़ा बहुत हम अब उबरने लगे हैं, और इस बजट में जो प्रावधान है, तो वो जो रफ्तार में प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए चाहिए, वो रफ्तार दे पाएगा यह बजट?
मैं समझता हूं कि कंसम्पशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट देश के लिए है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। और इस दिशा में फिर कंसम्पशन पे भी आता हूं मैं, पर पहले पहली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नए इन्वेस्टमेंट आते हैं तो नए इन्वेस्टमेंट ही सबसे प्रोडक्टिव होते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं ये, और एक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। तो कम से कम हमारा इन्वेस्टमेंट जो है, आपका अगर मीडिया में जनरल इंप्रेशन नैरेटिव अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है, वो बिल्कुल गलत है। अगर डेटा आप देखें जो मॉस्पी के हैं, जीडीपी डेटा आते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट का कितना हिस्सा है ये भी रिपोर्ट होता है। तो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा पिछले 3 साल में करीब 30%, जीडीपी का 30% से भी थोड़ा सा नीचे था 3 साल पहले, आज ये करीब 35% तक आ गया है। तो ये मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ रहा है जीडीपी। अब जैसे जैसे आर्थिक स्थिति आगे बढ़ेगी, इनकम्स बढ़ेंगी, तो सभी जो हैं आपके कंसम्पशन भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, सरकारी खर्चा भी बढ़ेगा। तो ये अल्टीमेटली, इसीलिए मैं कह रहा था कि ग्रोथ इसलिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये इन सभी के जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, इनको सभी को बढ़ने में, आगे बढ़ने में मदद करता है, और साथ ही साथ गरीबों के लिए जो है रेवेन्यूज भी क्रिएट करता है, जिससे कि सरकार सोशल प्रोग्राम्स को तेजी से आगे बढ़ा सके।
ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं, जैसे रोजगार जनरेशन से भी, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो रोजगार भी जनरेट होगा, रोजगार जनरेट होगा तो फिर उससे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो रोजगार के अवसर पैदा करने के लिहाज से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिहाज से, आप इस बजट को कितना सही मानेंगे?
हाँ, ये रोजगार का हमारा जो मसला है, मेरा दृष्टिकोण इसमें थोड़ा सा फर्क है जो जनरल दृष्टिकोण लोग रखते हैं उससे। पहली बात तो ये है कि हमारे देश में जो है बेरोजगारी की समस्या पर हम बहुत बात करते हैं, पर अगर आप डेटा देखें तो बेरोजगारी बाई इटसेल्फ इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि लोगों की आय कम होने के कारण हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना ही है, तो वो कुछ ना कुछ कर ही रहा है। तो आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा देखें तो आखिरी हमारे पास जो है एस्टिमेट इसका, बेरोजगारी का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो हमारा आता है, उसके 2020-21 साल वाला है, तो
जी
उसमें करीब 4.2% है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा हमारे पास हर क्वार्टर के आ जाते हैं, तो आखिरी क्वार्टर जो था वो जुलाई अगस्त सितंबर 2022 वाला था, तो वो काफी रिसेंट है। उसमें करीब 7.2% अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट आंकी गई है, और ये पिछले 4 साल में क्वार्टरली लेवल पर सबसे लोअर, लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आई है। मेरा ये मानना है कि हमारे देश की समस्या बेरोजगारी की कम है, जो मैं कहता हूँ अंग्रेजी में हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है लोगों के पास, उसमें उनकी पूरा पोटेंशियल आगे नहीं आ पा रहा है। जितनी इनकम वो जनरेट कर सकना चाहिए
जी
उतनी
मतलब
इनकम वो जनरेट नहीं कर पा रहे हैं,
उनकी क्षमता के
क्योंकि
मुताबिक, काबिलियत के मुताबिक उनको काम नहीं मिल पा रहा है।
कहाँ, ये मुश्किल है।
जी
और कई ऐसे भी हैं कि जो काम कायदे से एक इंसान कर सकता है, जो एक वर्कर कर सकता है, उसको 2 या 3 वर्कर मिलके कर रहे हैं, तो वो ही, इसका मतलब ये हुआ कि प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है वो कम हो गया। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, और ये हमारी स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही समस्या है। क्योंकि हमने क्या किया है, ये मैं थोड़ा सा 1 मिनट लेकर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि
जी
शुरू से हमने क्या किया है कि सारी हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारा जोर रहा है वो बड़े बड़े उद्यमों पे ज्यादा रहा है। तो शुरू में हमने स्टील मिल्स में लगाए थे, मशीनरी सेक्टर में लगाए हमारा इन्वेस्टमेंट, तो ये और ये सिलसिला आज भी जारी है। अगर आप देखें कि हमारी सबसे ज्यादा जो सफल सेक्टर्स हैं वो कौन से हैं, तो देख लीजिए, एक तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग का बड़ा सफल सेक्टर है, वो भी बहुत हाईली कैपिटल इंटेंसिव, बहुत ज्यादा उसमें निवेश लगता है, वर्कर कम लगते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स की देख लीजिए, केमिकल्स को देख लीजिए। तो हमें क्या हुआ है कि हालांकि हम काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैंने अभी कहा करीब करीब 35% जीडीपी का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, पर 30 तक तो 29-30 पे तो चलता ही रहा है हमेशा से, पिछले 20-22 साल से अगर देखें तो। पर हुआ ये है कि ये सारा जो इन्वेस्टमेंट है हमने ऐसे सेक्टर्स में लगा दिया है जहां पर वर्कर बहुत कम है। अब हमारा जो रिसोर्स है सबसे बड़ा वो तो लेबर है, वर्कर है। दूसरे जो ज्यादातर वर्कर्स हैं वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस में एम्प्लॉयड हैं। अगर पहले तो देख लीजिए एग्रीकल्चर है, कृषि में है, कृषि में करीब 45% वर्कर हमारे कृषि में लगे हुए हैं, 42 से 45 मान लीजिए कृषि में लगे हुए हैं, उन वो भी बहुत छोटे छोटे खेतों पर। मतलब आप देख लीजिए आधे खेत हमारे जो हैं वो करीब आधे हेक्टेयर के भी नहीं है, ऑन एवरेज आधे खेत जो है करीब क्वार्टर हेक्टेयर, चौथाई हेक्टेयर के हैं, तो उसपे क्या खेती कर सकती है, तो वो भी अंडर एम्प्लॉयड है फिर किसान उसमें। इधर जो इंडस्ट्री और सर्विसेज में है उसमें ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस में बैठे हुए हैं करीब करीब, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं करीब 80% जो है, बाकी के जो बचे हुए इंडस्ट्री और सर्विसेज के वर्कर्स हैं इनके पास हार्डली कुछ कैपिटल है। तो एक तरफ तो वर्कर जो लगे हुए हैं बहुत जरा से वर्कर्स, उनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है, दूसरी तरफ ज्यादातर वर्कर जो हैं, जो आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है, उसके पास हार्डली कुछ कैपिटल है। तो उसकी वजह से ज्यादातर जो वर्कर्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन क्षमता है, उत्पादन करने की क्षमता, वो बहुत कम है। तो ये मैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो बात कर रहा था वो है, ये बहुत बड़ी समस्या है, स्ट्रक्चरल समस्या है, इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। और सरकारों का ये हमेशा रहता है, चाहे आप प्लानिंग के जमाने की सरकारें देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी के समय की या बाद में इंदिरा गांधी जी के समय की, अब भी की भी, कोई भी सरकार, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, सभी सरकारों में ये रहता है कि बड़े बड़े उद्यमों बड़े बड़े उद्योगों पर सब जोड़ देते हैं, पर ये नहीं सोचते कि इसमें जो है वर्कर का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, कि उसको ज्यादातर वर्कर्स को अनफ कैपिटल, काफी कैपिटल जो थोड़ी बहुत जो चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो इसकी वजह से फिर हम जो विश्व की जो एक्सपोर्ट्स हैं, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, उनमें भी हमारा कॉम्पिटिटिव एज नहीं बन पाता, क्योंकि जैसे आप क्लोदिंग इंडस्ट्री लें, कपड़ों की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया में, $800 बिलियन के एक्सपोर्ट होते हैं कपड़ों के, पर हमारा इसमें कुछ भी, हम मुश्किल से $20 बिलियन भी नहीं एक्सपोर्ट कर पाते $800 बिलियन के। चीन है $150 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, हमसे ज़्यादा वियतनाम जो जिसके करीब 90 मिलियन है पॉपुलेशन सिर्फ, यानी कि 9 करोड़, वो हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है कपड़े, बांग्लादेश हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है कपड़े। तो अगर इसमें हमारी बड़ी कंपनियाँ आएँ, जैसे कपड़े का उद्योग है, इसमें बड़ी कंपनियाँ आएँ जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं उसका फ़ायदा उठाएं, थोड़ी कैपिटल यूज़ कर सकें ज़्यादा, क्योंकि हमारे दूसरे देशों के मुकाबले में जो 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 सफल देश हैं, जैसा मैंने बताया कि चीन हुआ या वियतनाम हुआ या बांग्लादेश हुआ, कपड़ों के मार्केट में जो सफल देश हैं उनमें कंपनियों की स्केल बड़ा है, और इस वजह से उसमें फिर जो है हर वर्कर के पास कैपिटल भी ज़्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो कपड़े बनाने में, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसमें ज़्यादा लेबर लगता है, कैपिटल कम लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि इनको कैपिटल नहीं चाहिए, उनको भी कुछ कैपिटल चाहिए, और कई चीज़ों को ऑटोमेशन वो भी कर सकते हैं, तो अगर ऑटोमेशन करते हैं तो प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ती है, और फिर जो है विश्व में कम्पीट अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इस पर अभी भी मैं समझता हूँ कि हम पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं।
तो आपको लग रहा है कि इस बजट में इसको एड्रेस करने के लिए कुछ अच्छे प्रावधान हैं, या पिछले 4-5 साल में जो बजट आए हैं उसमें इस दिशा में सोचा जा रहा है और कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ग्रेजुअली?
कुछ कुछ प्रोग्रेस हुई है, ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं हुई है। अगर पूरा 20 साल का काल, 20 22 साल का काल लें हम, तो कुछ प्रोग्रेस तो हुई है, क्योंकि कई पॉलिसीज थी हमारी जो इस तरीके की पॉलिसीज को ज्यादा बढ़ावा दे रही थी। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिजर्वेशन हुआ करता था, तो उसमें तो साफ था कि भाई कानून ऐसा था कि 800 सेक्टर हमारे, 800 प्रोडक्ट ऐसे थे जिनमें कपड़ा भी था, जिनमें फुटवेयर, जूते बनाने का था, तो फुटवेयर कहते हैं, वो इंडस्ट्री हुई, फर्नीचर इंडस्ट्री, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व थे, उसमें बड़े उद्यम आ ही नहीं सकते थे। तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आप जो है उसमें, अगर आप मशीनें नहीं लगा सकते, अगर आप लार्ज स्केल पे नहीं जा सकते, स्मॉल स्केल ही आपका रहना है, तो आपको मशीनों का इजाजत ही नहीं थी। और ये स्मॉल स्केल की डेफिनेशन भी ऐसी थी कि करीब $1 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप, तो अगर एक, क्योंकि 1 मिलियन से ऊपर गए तो आप स्मॉल स्केल में नहीं रहते। तो ये कानून ही गलत था, जिसको हमने जो है करीब 2005 में जाके खत्म किया। अब आप सोचिए, 1950 से 2005 तक, 55 साल तक ये हमारा कानून रहा कि ये जो 800 करीब प्रोडक्ट ऐसे थे जिसमें $1 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाले उद्यम आ ही नहीं सकते थे। तो ये पुरानी, तो अब वो खत्म हो गया, वो 2005 के आसपास करीब जो है, कुछ प्रोडक्ट बच गए थे, वो मोदी सरकार ने खत्म किए थे, आखिरी के करीब 20-21 प्रोडक्ट थे 800 में से। पर अब करीब यू नो, पर 2005 तक ज्यादातर जो है ये रिजर्वेशन खत्म हो गया था। उसके अलावा फिर क्या हुआ कि लेबर लॉज हमारे बहुत स्ट्रिंजेंट थे, तो लेबर लॉज भी ऐसे थे, ऐसे हैं अभी भी हैं, अभी बदले नहीं है। मैं बताता हूँ कि क्या स्थिति है इस वक्त, पर लेबर लॉ अभी भी हमारा ऐसा है कि अगर आप जो है 100, कुछ स्टेट्स ने बदल लिया है, पर ज्यादातर जो हमारा सेंट्रल लॉ है वो ये है कि अगर 100 वर्कर्स आपकी कंपनी में काम करते हैं, तो आप किसी भी दिशा में, किसी भी स्थिति में वर्कर को जो है फायर नहीं कर सकते, आप उसको काम से नहीं निकाल सकते। तो जब कानून ऐसा होता है और वर्कर को ये पता है कि मुझे कभी निकाला नहीं जा सकता कानून के तहत, तो वर्कर की स्वाभाविक ऐसी प्रवृत्ति रहती है कि कई सारे वर्कर काम करते ही नहीं है। ये यही स्थिति हमारी, जैसे स्कूल के जो पब्लिक स्कूल हैं उनमें है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, क्योंकि जानते हैं कि निकाल नहीं सकते तो काम पे नहीं आते, कई बार आते ही नहीं है, टीचर एब्सेंटीज्म इतना ज्यादा है। तो सेम जो है स्थिति इस लेबर लॉ में भी ऐसी है। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी जो है हमेशा वर्कर्स को निकालना चाहती है, कंपनी का तो इंटरेस्ट इसी में है कि वर्कर रहे और प्रोडक्टिवली काम करे और कंपनी भी आगे बढ़े, वर्कर भी आगे बढ़े। पर कई बार क्या होता है कि 100 में से 3 वर्कर ऐसे हुए जो खराब होते हैं, तो वो सारे एटमोसफेयर को खराब करते हैं, तो उनको हटाना जरूरी होता है कंपनियों के लिए। पर अगर 100 से ज्यादा की कंपनी है तो वो नहीं हटा पाती, तो इस वजह से फिर कंपनी बड़ा नहीं बनना चाहती, खास तौर से ऐसी जो लेबर इंटेंसिव है, कपड़ों की इंडस्ट्री हुई, फुटवेयर की हुई, इन इंडस्ट्रीज में जो है प्रॉब्लम ज्यादा होती है वर्कर्स को डील करने की। उसमें तो फिर भी इतनी नहीं होती जैसे आप कार बना रहे हैं या आपके जो स्कूटर बना रहे हैं, मोटरसाइकिल बना रहे हैं, इनका क्या है कि लेबर कॉस्ट 4% है कुल मिला के, जो टोटल कॉस्ट है उनमें 4% है लेबर का हिस्सा। तो अगर जरूरत पड़े तो लेबर को पूरे जिंदगी भर की तनख्वाह देकर भी निकाल सकते हैं वो लोग कि भाई ये तुम्हारे 30 साल काम करते, तुम यहाँ पे तुमने 20 साल किया है, बाकी 10 साल की तनख्वाह ये है, ठीक है चले जाओ, यानी कि गोल्डन हैंडशेक जिसको हम कहते हैं वो कर सकते हैं। पर कपड़े वाले या जूते वाले या फर्नीचर वाले जो हैं वो ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो है लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, लेबर कॉस्ट का हिस्सा 30-40% लेबर कॉस्ट का हिस्सा होता है उनका, तो उनको ये ऑप्शन नहीं है। तो ये इजाजत होनी चाहिए। अब नए कानून सरकार ने बनाए हैं, पार्लियामेंट ने 2019 में पास किए हैं, पर वो कानून अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, इसके जो है रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो अभी भी सब स्टेट में तैयार नहीं हुए हैं, तो इस वजह से अभी उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ इसमें रियायत होगी लोग कंपनियों को कि इसमें नए कानून ने ये जो लिमिट थी वर्कर्स पे 100 से बढ़ाकर 300 कर दिए उन्होंने। हालांकि 300 भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट में आपको कम्पीट करना है तो आपको तो 1-1 लाख लोगों की कंपनीज होती हैं। अभी अगर चीन में देखें तो एक ही कंपनी में 1-1 लाख वर्कर काम कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं हो तो कम से कम 2-3 हज़ार वर्कर्स की कंपनी तो जरूरी है। हमारी भी जो एक्सपोर्ट की कंपनियां हैं, सबसे बड़ी कंपनी हमारी जो है कपड़ों में, वो शाही एक्सपोर्ट्स की है, और शाही एक्सपोर्ट्स की कंपनियां कम से कम 1500 से 2000 तक उनको वर्कर्स लगाने होते हैं, क्योंकि उसके बिना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं आ पाता, उसके बिना वो कॉस्ट भी इतनी नहीं प्रोड्यूस कर सकते जिससे कि वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट कर सकें, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट बहुत ही कम्पेटिटिव है, हाईली कम्पेटिटिव, तो वहाँ पे आपको बहुत हाई एफिशिएंसी की ज़रूरत है। तो इस वजह से उसमें भी, पर नए कानून ने ये ज़रूर किया है कि अगर स्टेट्स, कोई राज्य इस लिमिट को 300 से बढ़ाकर 3000 भी करना चाहता है या 30,000 भी करना चाहता है, तो राज्यों को पूरी छूट है, और इसमें उनको कोई कानून भी पास नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक नोटिफिकेशन के थ्रू अगर वो कर देते हैं तो ये इस लिमिट को 300 से बढ़ाकर जो भी राज्य सरकार चाहे वो कर सकती है। तो मेरी ये उम्मीद है कि एक बार ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो अगर 2 या 3 राज्यों की सरकारें भी आगे आ जाती हैं, वो आगे बढ़कर इसको 3000 या 30,000 कुछ भी कर सकें आगे बढ़ाकर, तो फिर मैं समझता हूँ कि रास्ता खुलेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है जरूर, सारे 28 राज्यों में उनको अपनी कंपनियां नहीं लगानी होती हैं, अगर 2-3 राज्य भी ऐसा कानून को बदल देते हैं तो ये कंपनियां वहां पर अपने आप को स्थापित कर सकती हैं।
तो आपने जैसे कंपनियों की बात की, कर्मचारियों को निकालने की बात की, तो इसी से जुड़ा सवाल एक और कर लेते हैं। जैसे आजकल छटनी काफ़ी हो रही है, खास करके अमेरिकी कंपनियों में, गूगल, मेटा, अमेजोन में जो छटनी हुई है, तो भारत में भी उसका असर पड़ा है। भारत में भी बायजू और शेयर चैट में निकाले जा रहे हैं लोग, तो एक तरह का माहौल बन रहा है जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है और जो नौकरी पेशा लोग हैं खास करके प्राइवेट सेक्टर में, तो उनमें एक असमंजस की स्थिति है। पता नहीं ये आने वाला साल कैसा रहेगा, तो बजट के मद्देनज़र और मौजूदा स्थिति के मद्देनज़र आप उनके लिए क्या देखते हैं? उम्मीद का साल रहेगा या तो नाउम्मीदी देखनी पड़ेगी?
उम्मीद का रहेगा साल, न सिर्फ ये साल पर आने वाले कई साल जो है उम्मीद के रहेंगे। अब ये थोड़ी बहुत जो छंटनी है ये एक अच्छी बात है, क्योंकि वर्कर को भी अपना जॉब थोड़ा बदलना चाहिए। वो जमाना अब चला गया जब हम एक ही नौकरी लेते थे और उसी नौकरी को पूरी जिंदगी करते थे। अब वर्कर को कंपनी बदलनी होती है और इसमें नई चीजें सीखते हैं, वर्कर हार्डर वर्क करता है, नई अपॉर्चुनिटीज का यूज करता है। अभी जो हो रहा है, जैसे पूरा अगर देखें अमेरिका की स्थिति, तो ये आप सही कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं, इन्होंने इनका बड़ा तगड़ा बूम हुआ पिछले 2-3 साल में, तो उसमें इन्होंने काफी हायरिंग वगैरह बढ़ी, तो अब जो है वापस जोर पड़ रहा है, छटनी हो रही है। पर अगर ओवरऑल हमारा देखें अमेरिका में, अब भी जो है इन पिछले महीने में हमारे यहाँ 517,000 नए नौकरियां लगी हैं ऑन नेट। नेट मतलब जो इनको भी काउंट कर लें, जो जॉब्स लॉस्ट भी कर दिए और जॉब्स गेन, उनको अगर नेट करें, पॉजिटिव और नेगेटिव को नेट आउट करें, तो 517,000 नौकरियां टोटल बढ़ गई हैं अमेरिका में पिछले 1 महीने में। तो हमें भी इस तरीके से सोचना चाहिए कि ये सिर्फ, ये क्या होता है कि जो टेक इंडस्ट्री है, जैसे कि मैंने कहा मीडिया भी, तो सरकार भी जो है इन इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देती है, मीडिया का भी इन इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान रहता है, तो थोड़ा भी कुछ अगर इन इंडस्ट्री में होता है तो वो बड़ी न्यूज़ बनती है, उसके अलावा नेगेटिव न्यूज़ हमेशा बड़ी बनती है, तो वो हमें ज़्यादा दिखता है। पर अगर हमारे खुद के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा हम देखें, जो मैंने आपको बताया अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के जो डेटा हैं वो सितंबर तक के हमारे पास हैं, और वो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटती जा रही है। 1 साल में ये रेट जो है 12% से ऊपर थी, ये अगर आप सेम क्वार्टर 2021 का लें, उसमें करीब 12.2 या 12% से ऊपर थी, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 7.2% रही है। तो नेट हमारे भी जॉब्स बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं,
मतलब ये कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, सेक्टर स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ हाँ, तो पर ये तो होना चाहिए ना, जो अगर डायनामिक इकोनॉमी है तो उसमें ये होना ही चाहिए, कुछ सेक्टर लीडिंग सेक्टर्स हैं, कुछ लैगिंग सेक्टर्स हैं, तो रिसोर्सेज जो है हमारे उनका एलोकेशन लीडिंग सेक्टर्स में, लैगिंग सेक्टर्स से लीडिंग सेक्टर्स में जाने का होना चाहिए, क्योंकि ये तो अगर सारे रिसोर्सेज जहां लगे हुए हैं वहीं लगे रहेंगे तो प्रगति बहुत कम होगी। जबकि अगर ऐसा है कि कुछ सेक्टर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो वो जो दूसरे सेक्टर इतने तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं उनसे रिसोर्सेस खींचेंगे। तो ये एक अच्छी बात है, अर्थव्यवस्था में ये डायनामिज्म होना जरूरी है। आ, 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 असल में मैं बताऊं आपको कि क्योंकि क्या होता है कि एक तो ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जो नेगेटिव चीजें हैं वो हमें दिख जाती हैं, पॉजिटिव चीजें हमें नहीं दिखती हैं। और जब कोई पेनफुल चीज होती है तो वो आगे बढ़ के आती ही है, स्वाभाविक है ऐसा, पर जो पॉजिटिव है वो नहीं आता। तो पर अर्थशास्त्रियों को जो है सभी को देखना होता है, तो इसलिए हम पूरे एग्रीगेट डेटा को जाकर ज्यादा देखते हैं कि भाई ओवरऑल इंपैक्ट क्या हुआ।
अब जो आय बढ़ने की बात है, जैसे वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है वो दोगुनी हो गई है, लेकिन वो 9 साल की तुलना में दोगुनी हुई है, 1,97,000 उन्होंने शायद बताया प्रति व्यक्ति आय। तो इस साल लोगों की आय बढ़ने का क्या अनुमान है, क्या बजट में इसके क्या संकेत आप देखते हैं?
ओवरऑल जो बताया है उसमें करीब वो इकोनॉमिक सर्वे ने लिखा है कि 6.5% ग्रोथ होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि करीब हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो करीब 1% है। तो अब शायद कुछ 1 से भी कम हो गई हो, पर 1 तक ज्यादा मान लें तो 5.5% फिर प्रति व्यक्ति आय जो है 5.5% बढ़ेगी।
अच्छा, एक मसला कर्ज का आता है, जिसे इकोनॉमिक सर्वे में भी सरकार ने माना है कि 2014 से 2022 के बीच जो उम्मीद जितनी की गई थी उतनी ग्रोथ नहीं हुई, ग्रोथ हुई लेकिन उम्मीद से कम हुई, और उसका एक कारण, कई कारण सरकार ने बताया, तो उसमें एक कारण ये भी है कि कंपनियों ने कर्ज बहुत ज़्यादा ले लिया। तो अभी जैसे ताज़ा मसला आया है अडानी समूह का, अडानी समूह के पास भी बैंकों का काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, और अडानी समूह अभी जिस तरह के विवाद में फंसा है, अन्य कंपनियों के भी जो कर्ज हैं उसको देखते हुए क्या लगता है कि जैसे ये पिछले कुछ सालों में ग्रोथ में बाधक रही, कि इस साल भी ये कुछ ऐसी बाधा उत्पन्न कर सकता है ये कर्ज का मसला?
ये अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो कर्ज की समस्या, कंपनियों के कर्ज की समस्या इस बार हुई जो करीब 2013 से साफ थी, थोड़ा सा हमने भी इसमें डिले किया उसको डील करने में। करीब हम 2017 से इसको फिर सुधारने में लगे, पर 2017 तक हमने पर 2013 से 2017 की विंडो को हमने थोड़ा मिस किया इसमें। पर ये कर्ज की समस्या पीछे जाती है, जो ये है यूपीए सरकार के समय में बहुत रेकलेस लेंडिंग हुई और ये साफ दिख रहा था डेटा में कि अच्छा, और उस वक्त क्या था, कानून भी गलत था कि आ, आ, जो बैंक जो थे वो लोन को रिस्ट्रक्चर कर देते थे, और जब रिस्ट्रक्चर करते थे तो बैंक का कोई डाउनग्रेडिंग नहीं होता था, एनपीए में नहीं जाता था वो। तो बिल्कुल गलत कानून था। दुनिया भर में जब है, जब भी अगर किसी कंपनी का आप लोन रिस्ट्रक्चर कर रहे हो तो उसको जो है डाउनग्रेड किया जाता है कि वो एनपीए में जाएगा, नॉन परफॉर्मेंस एसेट में जाएगा। तो हमने किया नहीं, उसको रिस्ट्रक्चर करते रहे। तो फिर क्या होता है कि अगर ऐसा कानून है तो जो ऋण लेने वाला है वो भी रिस्ट्रक्चर करना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका लोन एनपीए में चला जाए। बैंक होता है वो भी सोचता है कि यार मैं एनपीए में लगेगा तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम दिखेगी, तो वो भी उसको रिस्ट्रक्चर करने में उत्सुक होता है, वो रिस्ट्रक्चर कर देता है। तो ये कानून ही गलत था, और ये कानून 2001 से चला आ रहा था, ये कोई नया कानून नहीं था। और इसको इनको रिजर्व बैंक को बहुत समय लग गया, 2015 में जाके फिर रिजर्व बैंक ने उस कानून को बदला, जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस थी उसको हमने अडॉप्ट किया 2015 में जाकर। तब तब वो सारे जो रिस्ट्रक्चर्ड लोन थे उनमें से ज्यादातर सब बहुत जल्दी एक के बाद एक जो है एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बदल गए, खराब लोन में, खराब ऋण में बदल गए वो बैंकों की बैलेंस शीट पर। तो जब ऐसा होने लगा तो वो कॉरपोरेशंस का रिस्ट्रक्चरिंग जब बंद हुआ तो कॉरपोरेशंस की बैलेंस शीट भी गड़बड़ हुई। तो ये सारा जो है इसकी वजह से कॉरपोरेट एनवायरनमेंट बिगड़ा और उसकी वजह से जाकर हमारी ग्रोथ रेट 2019-20 में गिरकर 3.7% रह गई। अगर आप पिछले उसके पहले के साल लें, जो मोदी सरकार का पहली पूरी टर्म लें, 14-15 से 18-19 और तक की 5 साल में ग्रोथ रेट हमारी अच्छी रही है, 7.4% रही है ग्रोथ रेट। पहले 5 साल में मोदी सरकार की ग्रोथ रेट 7.4% रही है। पहले 6 साल भी अगर हम लेते हैं तो ये ग्रोथ रेट करीब 7% के आसपास रही है, 6.8 रही शायद। पर ये एक साल ऐसा हुआ 19-20 का, और ये ज्यादातर इसी वजह से हुआ कि ये सारे जो एनपीएस वगैरह थे फाइनली बैंकिंग में क्राइसिस को सॉल्व करने में लग रहे थे, तो क्रेडिट ग्रोथ खत्म हो गई थी हमारी। ये 2017 के साल में, मैं तब इंडिया में ही था, मैं नीति आयोग में, तो फाइनली जब 2017 में लगा कि सारी क्रेडिट ग्रोथ ही खत्म हो गई है, तब जाके जो है मुश्किल कदम इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के तहत सारी कंपनीज को बैंकरप्सी कोर्ट के अंदर भेजा गया। करीब 12 बहुत बड़ी कंपनीज के जो थे ये खराब लोन, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बाय ऑर्डर बैंकरप्सी कोर्ट में भेजा। तो ये पुरानी कहानी है। अब जो स्थिति है इस वक्त हमारी वो बहुत साउंड है। मैंने ये भी कहा है कि अब जो हमारी स्थिति है इस वक्त वो करीब करीब वैसी स्थिति है जो हमारी 2003 में थी, कि 2000 उस वक्त भी बहुत सारे खराब लोन हुए थे 90s वगैरह में, क्योंकि ये प्रक्रिया शुरू ही हुई थी 90s में कि आइडेंटिफाई करना कि क्या खराब लोन है क्या अच्छे लोन है, क्योंकि शुरू 80 तक तो कुछ था ही नहीं, हमारा सिस्टम ही नहीं था इस बात का कि खराब लोन्स को आप आइडेंटिफाई भी करें। 90s में जाके धीरे धीरे रिफॉर्म हुए, तो इसको इसकी प्रक्रिया जब शुरू हुई तो बहुत सारे आइडेंटिफाई हुए, तो एनपीएस अगर देखें तो बहुत हाई थे हमारे उन जो अभी 12.5% थे उससे भी ज़्यादा हाई थे उन दिनों में। फिर वाजपेयी सरकार ने इनको क्लीन अप किया बहुत ज़्यादा। तो भाई 2003 हमारी स्थिति बहुत बढ़िया हो गई थी, और फिर 2003 हमारा पहला साल था 2003-04 का जब ग्रोथ रेट करीब करीब 8% के पास आ गई थी। उसके बाद सरकार बदली, यूपीए सरकार आई और ग्रोथ चलती रही। तो वही स्थिति मैं मानता हूं कि अब हमारी है। कोविड के दौरान हमने बैंक्स को भी, बैंक्स की बैलेंस शीट्स भी साफ कर दी, सरकार ने बहुत ज्यादा उसमें जो है रिकैपिटलाइज किया है, करीब 3-3.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों में लगाए हैं, तो रिकैपिटलाइज हो गए हैं बैंक्स, बैंक्स की बैलेंस शीट अब अच्छी है, कॉरपोरेशंस का भी क्लीनअप हो गया है तो उनकी बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि इस वक्त के हमारी जो स्थिति है वो बहुत मजबूत स्थिति है, और इसीलिए मेरा ऑप्टिमिज्म है कि आने वाले सालों में फिर से हम कम से कम 7% वृद्धि दर से आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो ये अदानी ग्रुप वाला जो ऐसा है कि अभी धीरे धीरे फैक्ट सामने आए हैं, तो उसमें हमारे बैंक्स का तो एक्सपोजर बहुत कम है। वित्त मंत्री का भी स्टेटमेंट है आपके अखबारों में, समाचार पत्रों में, कि चाहे आप LIC को ले लें, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ले लें, चाहे सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी स्टेटमेंट आ गया है, पंजाब नेशनल बैंक का भी स्टेट, सभी ने अपने अपने स्टेटमेंट दे दिए हैं। इतना कोई एक्सपोजर इन बैंक्स का है नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कहाँ तक हिंडनबर्ग सच है और कहाँ तक अडानी सच है, ये भी तो अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि हिंडनबर्ग की तो ये हिस्ट्री रही है। आप देखिए हिंडनबर्ग खुद जो है करीब 6 साल पहले की कंपनी है, और एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन यूनाइटेड स्टेट्स में चल रहा है इस वक्त। ये सारी जो शॉर्ट सेलर्स हैं, जो इस तरीके के एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर्स कहते हैं इनको हम, इसमें क्या करते हैं ये लोग कि इस तरीके की रिपोर्ट जब निकलती है तो उसके पहले ही ये जो है इनके पास शेयर्स तो है नहीं, तो उन शेयर्स को बेच देते हैं, या तो बोरो कर लेते हैं किसी से शेयर्स, या ये कहते हैं कि 15 दिन बाद हम आपको शेयर्स डिलीवर करेंगे, या 20 या 1 महीने बाद शेयर्स डिलीवर करेंगे, पर वो ट्रांजैक्शन जो है आज की तारीख में आपका हो गया एग्रीमेंट की भाई हम चलिए 1 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद आपको ये शेयर्स देंगे, कीमत इसकी ये है। फिर आप क्या करते हो कि इस तरीके की खराब न्यूज निकालते हो। तो मैं नहीं कह रहा कि हिंडनबर्ग ने निकाली है ऐसी, पर कुछ शॉर्ट सेलर्स का ये रिकॉर्ड है, और इसी बात का इन्वेस्टिगेशन जस्टिस डिपार्टमेंट अमेरिका में कर रहा है जैसे जिस तरीके का रिएक्शन इंडिया में हुआ उसी तरीके का रिएक्शन दूसरे देशों में भी होता है। अब हिंडनबर्ग ने खुद ने एक रिपोर्ट इंडिया अमेरिका की किसी कंपनी के खिलाफ निकाली थी, एक चीन की किसी कंपनी के खिलाफ निकाली थी, दूसरे के कई सारी, करीब आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देखें तो साल में करीब 8-10 रिपोर्ट्स ये लोग निकाल रहे हैं। और ये और इस कंपनी की खुद की ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं है, ये कहते हैं कि हम डकेट्स का हमारे एक्सपीरियंस है, जबकि कंपनी खुद 6 साल ही पुरानी है। तो और जो इन्वेस्टिगेटिव कंपनी है, जो दूसरों से दूसरे कंपनी को कह रही है कि आपको ट्रांसपेरेंसी रखने की जरूरत है और आपको डिस्क्लोजर करने की जरूरत है, उसका खुद का कोई डिस्क्लोजर नहीं है। कितने एम्प्लॉयज हैं ये इसकी वेबसाइट पर डिस्क्लोज नहीं है, कौन एम्प्लॉयज की क्या क्वालिफिकेशंस हैं, इसका कोई डिस्क्लोजर उसमें नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह सकता, ये तो सेबी को ही तय करना है कि कितना इसमें सच है कितना झूठ है, क्योंकि न आपको पता है इस फैक्ट्स, न मुझे पता है, न मुझे नहीं लगता कि हाइडनबर्ग रिसर्च को भी पता है।
जी
सेबी को इसमें जो है बैठकर जो अडानी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बैठकर अगले 2-3 दिन में ये वार्ता करनी चाहिए, पूरा एक एक चीज पूछनी चाहिए सारी, और फिर सेबी को इस बारे में रिपोर्ट देनी चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स को ये बात क्लियर हो सके कि भाई क्या असल स्थिति है। मेरा ये मानना है कि लोग ये हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, मीडिया बहुत एक्टिव है, तो जो इंसेंटिव है बाहर की कंपनियों का, और ये बाहर की कंपनी ये भी जानती हैं कि हमारे सिस्टम में उनको खूब क्रेडिबिलिटी दी जाती है, चाहे एक रोक कंपनीज हो उनको भी हमारे, क्योंकि अगर बाहर की कंपनी है तो हम ये मान के चलते हैं कि इसका मतलब अच्छी ही होंगी, पर वो भी रोक कंपनीज हो सकती हैं, भी हम नहीं जानते इस बात को। तो
जी
इसलिए जो है ये सिस्टम हमें डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी। ये आगे चल के भी हो सकता है इस तरीके की दूसरी कंपनीज के विषय में भी इस तरीके की रिपोर्ट निकाले जाए ताकि शॉर्ट सेलिंग करके बहुत ज्यादा पैसा बहुत कम समय में कमाया जा सके। तो इसमें और क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी दूध की धुली हुई है, तो उसमें भी दिक्कत है, उसमें भी गलतियां हो सकती हैं। तो इसलिए सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है इस विषय में।
ठीक, जैसे विनिवेश का हम लोगों ने पहले थोड़ा सा जिक्र किया, तो अगर हम देखें 2019 से लेके 22 तक तो विनिवेश का काफ़ी जिक्र होता था बजट में। 19 में 80,000 करोड़ का टारगेट था, 20 में 1,05,000 करोड़ का टारगेट था, 21 में 2,10,000 का टारगेट था। बट इस बार का जो बजट आया है इसमें विनिवेश का बहुत ज़्यादा कोई शोर नहीं है।
नहीं, पर टारगेट है 65,000 करोड़ रुपए का टारगेट इसमें
जी,
है।
65,000 करोड़ का टारगेट रखा गया है, लेकिन अगर उसको देखा जाए 1,75,000, 2,10,000, 1,05,000, उसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है।
हाँ, वो सरकार ने देखा ना कि कितना अचीव कर पाते हैं इसमें। आपने पहले मुझे खुद कहा था कि विनिवेश का इन्होंने टारगेट इतना रखा था पर इतना हुआ नहीं, तो
जी
कह
जी
देते हैं ज्यादा कर नहीं पाते हैं। तो सरकार भी अब इस बात को महसूस कर रही है कि अपना खुद के अनुभव के आधार पर कि जो है जिस गति से सरकार सोचती थी कि हम कर सकते हैं वो नहीं कर पाई, तो अब उसी बात को लेकर फिर ये निर्णय पे पहुंची शायद कि हमें टारगेट इतना ही रखना चाहिए कि जितना रियलिस्टिकली हम अचीव कर सकें। तो इसलिए अब इस बात का टारगेट, और ये एक अच्छी बात है आप, मैं बताऊं इसलिए कि वरना क्या होता है कि आप फिस्कल डेफिसिट को जो वित्तीय घाटा है उसको बहुत कम दिखा देते हो, क्योंकि आप बहुत सारा विनिवेश की आपकी आय दिखा देते हो, आप 1,000 मान लीजिए 1,20,000 करोड़ आपने दिखा दी,
जी जी
जबकि आपके बाद में आई नहीं, तो फिर डेफिसिट तो ज्यादा होगा ना आपके बजट पर। तो इस वजह से मैं मानता हूं कि एक अच्छी बात है कि अगर कम विनिवेश दिखाया है तो इसका मतलब जो है फिस्कल डेफिसिट जो वित्तीय घाटे का जो 5.9% फिगर सरकार ने दिया है वो रियलिस्टिक है, वो अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए और इसमें मैं बताऊं एक सबसे, क्योंकि ये तो मैं खुद सबसे पहले 2016 से मैंने विनिवेश के बारे में इस सरकार में
जी
प्रक्रिया सारी मैंने शुरू करवाई थी नीति आयोग से, पर इसमें हमारे कानून इतने मुश्किल हैं, हमारे इतने रेगुलेशन के लेयर आफ्टर लेयर इतनी हैं कि ये विनिवेश करना इतना आसान नहीं है हमारे देश में। और इसीलिए आपने देखा कि मेरे समय के जो डिसइन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी थे उनने एक भी निवेश नहीं कर पाए, मेरा मतलब कि प्राइवेटाइजेशन, बाकी तो स्टॉक की सेल करके तो विनिवेश हो जाता है, वो डिसइन्वेस्टमेंट वो तो अलग बात है, वो आसान है। जो असल में पूरी कंपनी का, कंपनी को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना पब्लिक सेक्टर से, वो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो वो विनिवेश जो हमारे टाइम के सेक्रेटरी थे डिसइन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी, वो एक भी नहीं कर पाया, उसके बाद दो सेक्रेटरी और आए, उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी वाले ने किया है काफी, ये जो तुहिन कांता पांडे हैं अभी के जो सेक्रेटरी हैं,
जी
ये एयर इंडिया का इन्होंने ही किया है। अभी वो नीलांचल वाला स्टील का बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका भी इन्होंने किया है। पर इन्होंने दो दो और किए थे तो वो फिर वापस कोर्ट्स में चले गए, तो वो हो जाएंगे पर फिर भी बीच में अड़ंगा लग गया। तो हमारे सिस्टम्स जो हैं वो इतना आसान नहीं है। ये मैं खुद इस बात को काफी समय बाद रियलाइज कर पाया, मुझे लगा कि ये ब्यूरोक्रेसी बहुत इसको स्लो चलाती है, वो भी सही है, थोड़ा बहुत ब्यूरोक्रेसी भी स्लो चलती है, कई बार अनविलिंगनेस भी है, सोशलिज्म का हमारा जो बैगेज है वो चला आ रहा है, वो सब भी है। पर जो सिंसियर ब्यूरोक्रेट जो करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे सिस्टम में इन चीजों को कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद उनको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी रहता है कि बाद में बहुत एलिगेशन आते हैं, चाहे कोई बेसिस ना हो, कुछ ना हो, एलिगेशन लग जाते हैं कि अरे उसका आपने जो है वैल्यूएशन आपने बहुत लो करके और उसको बेच दिया, और आपने ब्राइब ले ली, पैसा ले लिया, चाहे किसी के पास कोई बेसिस हो या ना हो। अब और होता क्या है कि पब्लिक सेक्टर में कंपनियां बहुत खराब तरीके से चलती हैं, तो जब बिकती हैं तो उनकी वैल्यू कम होती है, फिर प्राइवेट सेक्टर में जाते ही वो 15 साल में उनकी कीमत 10 गुनी हो जाती है जो मार्केट वैल्यूएशन है। फिर कहते हैं कि देखो इतनी वैल्यूएबल कंपनी थी आपने इतने समय बेच दी। अरे भैया आपने जब उसको बेचा तो उसकी वैल्यू उतनी ही थी, क्योंकि वो कंपनी कुछ सक्सेसफुली कुछ कर नहीं पा रही थी। ये तो बाद में प्राइवेट हैंड्स में जाने के बाद सक्सेसफुल हो जाती हैं एक्सपेक्टेड, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले की अपनी खुद की पूंजी उसमें जाती है, पब्लिक सेक्टर में टैक्स पेयर का पैसा जाता है, तो कोई उसका मालिक नहीं है देखा जाए तो इसलिए बहुत पुअर परफॉर्मेंस रहता है। तो इस वजह से जो है ये विनिवेश की प्रक्रिया अनफॉर्चुनेटली शायद हमारी धीमी ही रहेगी, पर जहां तक प्रोग्रेस कर सकें ये एक अच्छी बात है देश के लिए, क्योंकि कंपनीज के आप बाकी इन कंपनीज को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जैसे पुरानी कंपनीज वाजपेयी सरकार के जमाने में जो सारी कंपनीज प्राइवेटाइज हुई, एक एक कंपनी जो है बहुत अच्छा कर रही है, बहुत आगे बढ़ गई हैं वो कंपनीज, और जो प्राइवेटाइज नहीं हुई है वो वहीं की वहीं पर हैं जहाँ जहाँ वाजपेयी सरकार के समय थी। तो पर बॉटम लाइन की बात यही है कि इसमें जो है समय लगेगा।
जैसे 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके मुफ्त राशन को 1 साल और बढ़ाने की घोषणा पहले की थी, बजट में भी उसको दोहराया गया है। तो अब कोविड, सरकार भी मान रही है कि कोविड ओवर हो गया, तो इसके बाद भी ये 1 साल तक जो ये खर्च किया गया, तो ये आपको लगता नहीं कि इसका और कहीं प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो सकता था, या ये वोट पॉलिटिक्स के लिए है या इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए है?
हाँ, ये सरकार ने, मुझे लगता है कि इसमें कोई सरकार ने पॉलिटिकल कॉल ली है, वरना फिर भी अगर आप देखें ओवरऑल इसका, आप बजट में सारी सब्सिडीज को देखिए, इस सरकार ने बहुत सारी सब्सिडीज को कम किया है। पर ये आप जो बता रहे हैं सो मुझे देखना पड़ेगा। ये एक घोषणा की थी ना सरकार ने 1 महीने पहले करीब कि जो देखिए दो दो प्रोग्राम थे फ्री फूड के, एक तो ये था कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति जो है वो 2 रुपए, 3 रुपए और 1 रुपए की कीमत पर, 2 रुपए में गेहूं, 3 रुपए में चावल और 1 रुपए में दूसरी।
जी वो अलग है, बट ये जो है ये मुफ्त अनाज जो कोविड के समय में शुरू किया गया था
हाँ
उसको उसको दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया। हालांकि इसकी घोषणा जो है पहले ही
अच्छा
हो गई थी, कैबिनेट ने इसको पहले ही अप्रूवल दिया था, पहले अनाउंस भी हो गया था, बजट में सिर्फ इस घोषणा को दोहराया गया है। और उसके लिए 2 लाख करोड़ पहले भी कहा गया था, 2 लाख करोड़ रुपये खर्च आएंगे, तो उसका प्रोविजन उसमें
अच्छा
बढ़ा
अच्छा
गया
अच्छा, तो इसको 2000 दिसंबर 2023 में खत्म करेंगे, 2022 में नहीं?
जी नहीं जी नहीं,
अच्छा
2022 में होना था, उसको
मेरा भी,
एक
हाँ
साल और
मेरा,
एक्सटेंड कर दिया।
अच्छा, तो इसमें कुछ मैं समझता हूँ कुछ पॉलिटिकल कॉल लिए हुए हो सकता है, क्योंकि वैसे अगर सच बात देखी जाए तो इवन जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम जो देते हैं उसमें जो 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, उनमें से बहुत सारे हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो खरीदने की क्षमता रखते हैं, तो ये शुरू से ही गलत था। ये जब फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया जिसमें कहा कि 75% गांवों में और 50% शहरों में जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये सब्सिडाइज फूड दिया जाए, ये कानून ही शुरू से गलत था, क्योंकि इतनी हमारे सारे खुद के मेजर थे सरकार के उन दिनों में, 2011-12 का जो सर्वे आया था उसके हिसाब से पावर्टी इस लेवल की थी ही नहीं। ये कहना कि अब बीबी जो है हमारे देश में 75% गांव में 75% और शहरों में 50% जो है गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो गलत है, वो सरकार के खुद के डेटा नहीं शो करते ऐसा। तो पर अब इसमें पॉलिटिकल बैलेंसिंग है। अच्छे से अच्छा मैं यही कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता, पर बाकी कई सारी सब्सिडीज जो है टू द क्रेडिट ऑफ दिस गवर्नमेंट, कई सारी सब्सिडीज इस सरकार ने कम करी हैं। आप देखिए फर्टिलाइजर सब्सिडी बहुत कम की गई है, नरेगा वाला जो एक्सपेंडिचर है वो कम किया गया है, और भी हैं। आप देखिए एक ट्विटर पे एक राहुल शिवशंकर ने ट्वीट किया था, कई करीब 5-6 सब्सिडीज को उसने लिस्ट किया कि जो सरकार ने कम करी है। तो ऐसा नहीं है। सो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट है, कि अगर दूसरी सब्सिडीज को कम कर रहे थे, हो सकता है कि सरकार ने देखा कि इस वक्त हम जो है अभी इस सब्सिडी को नहीं हटाते हैं। सो ये वापस, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि पहले ही घोषणा हो गई थी वैसे 2022 में खत्म करने की, और फिर बजट ने उसको आगे बढ़ा दिया, तो शायद पॉलिटिकल कॉल ली हो सरकार ने।
बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद।